सातवीं आप लोग जानते हैं कि बहुत निकट आ रही है, तो आज विशेष रूप से हमने विचार किया कि भगवान के अंतर्धान के बारे में बताया जाए। भगवान के अंतर्धान के बारे में बहुत लोगों में शंका है कि भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा और या उनकी मृत्यु हुई, इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो है सुनने में आती हैं। यद्यपि ये समय तो भगवान के जन्म का है, लेकिन फिर भी भगवान के जन्म में और भगवान के अंतर्धान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के सब कर्म दिव्य हैं। भगवान की मृत्यु नहीं होती है। भगवान जब इस संसार से जाते हैं तो उसी प्रकार से जाते हैं जैसे सूर्य अस्त होता है। सूर्य का अस्त होता है तो क्या मतलब है, किसी दूसरे स्थान में सूर्य का उदय होता है कि नहीं, तो सूर्य समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान अंतर्धान होते हैं तो भगवान के कार्य में कोई अंतर नहीं आता है। केवल हमारी दृष्टि से भगवान दूर होते हैं, लेकिन भगवान किसी दूसरे स्थान में होते हैं और भगवान का शरीर नहीं बदलता। तो ये बातें हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंध का अध्याय 30 है और फिर 31वां अध्याय भी इसका भी कुछ अंश है जिसमें भगवान के अंतर्धान की लीला है। तो भगवान जब अंतर्धान हुए तो उसके पहले यदुवंश का संहार हो गया। आपस के युद्ध में पूरा यदुवंश का संहार हो गया और ये भगवान का जो वंश है तो वो कहाँ चले गए, भगवान के धाम में चले गए। अब इसके बाद फिर भगवान स्वयं विचार करते हैं कि अब उनको छोड़ना है इस पृथ्वी को। तो भगवान उस समय कैसा रूप प्रकट करते हैं, चतुर्भुज रूप, जैसा रूप उन्होंने प्रकट किया था जन्म के समय, जब देवकी और वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए तो चार भुजाओं का रूप धारण किया था। तो जब जा रहे हैं तो भगवान चार भुजाओं का रूप प्रकट कर रहे हैं और उनके शरीर का तेज जो है धुएं रहित अग्नि के समान चारों दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहा था। उनका वर्ण गहरे नीले बादल के रंग का था और रंग पिघले सोने के रंग जैसा उनका तेज था और उनका सर्व मंगल स्वरूप त्रिवस्त्र का चिन्ह धारण किया था। उनके कमल जैसे मुख पर सुंदर हंसी थी, उनके सिर पर श्याम रंग के बाल थे, उनकी कमल जैसी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके मकराकृति जैसे कुंडल चमक रहे थे। रेशमी वस्त्र धारण किए और पेटी, कमर में पेटी है इसको बोलते हैं करधनी, जनेऊ धारण किए और कंगन हाथों में कंगन और बाजूबंद भुजाओं में बाजूबंद, मुकुट धारण किए, कौस्तुभ मणि धारण किए, गले में हार और पैरों में पायल और सब राजसी चिन्ह धारण किए थे। उनके शरीर में फूलों की मालाएं पड़ी थी और उनके आयुध अपने साकार रूप में थे, चक्र गदा शंख ये सब चतुर्भुज मूर्ति के रूप में जो है प्रकट थे और उनके चारों तरफ बैठे हुए थे उनके आयुध। उनका बायां पैर उनके दाहिनी जान पर रखा था, बाएं पैर का जो तलवा है लाल कमल जैसा था और दाहिनी जंघा में रखा था। बिभ्रं चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णुः प्रभासयां विधूमे इव पावकः श्रीवत्ताङ्कं घनश्यामं सत्यहाटकवर्चसं कौसेयाम्बरयुग्मेन परिवेतं स्वमङ्गलम् सुन्दरस्मित वक्त्राजं नीलकुन्तलमण्डितम् कुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकर कुण्डलम् कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकाङ्गद हारनूपुर मुद्राभिः पाशुभेन विराजितम् वनमाला परितांगम् मूर्ति मंदिर निजायुधं त्रिपुरं दक्षिणे पादम् आसीनम् पंकजारुणम्। उस समय क्या हुआ, जरा नाम का एक शिकारी उस स्थान पर आया और भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। कौन सा पैर? बाया पैर का तलवा, बाएं पैर के तलवे को मृग का मुख समझ बैठा। ये सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, जरा ने उस पांव को अपने तीर से बेद डाला और वो जो तीर था वो साम के पेट में जो मूसल निकला था उसके अग्रभाग से बना हुआ था। मुसलावसे साया खंड कृते सुलुंड को जलाम मृगाख्या कारम तरणम दिव्याध मृग संकया। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अपने जानकारी में तो उसने उस मृग को बेध डाला, अपनी जानकारी में उसको दिखाई दिए कि मैंने मृग को बेध डाला, लेकिन वास्तव में उस तीर ने भगवान के पैर को स्पर्श ही किया था। क्योंकि तो भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद रूप है, तो वो तीर जो है भगवान के पैर को केवल छुआ था, बेधा नहीं था, लेकिन उसने उसको ऐसा लगा कि मैंने बेध डाला है। अब क्या हुआ, जब पास में आया तो क्या देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। तो शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत होता और वह असुरों के शत्रु के चरणों पर अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान असुरों के शत्रु हैं तो उसने अपने को असुर माना। असुर ही भगवान को मारने का प्रयास करते हैं तो उसने अपने को असुर माना और भगवान असुरों के शत्रु हैं इसलिए बहुत भयभीत हो गया वो कि मैं असुर हूं और भगवान असुरों के शत्रु हैं, मैंने भगवान के चरण में प्रहार किया है, तो उनके चरणों में गिरा। चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृत किल्बिषः भीता पपात शिरसा पादयोरसुरद्युषः। अब उस जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ, मैंने अनजाने में ही यह पाप किया है। हे शुद्धतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक मे नघ। हे भगवान विष्णु, विद्वान लोग कहते हैं कि आपका निरंतर स्मरण करने से किसी के भी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपका अनिष्ट किया है। यस्यानुस्मरणम नृणाम अज्ञान ध्वंत नाशनम वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है इसलिए नहीं कि वो जिंदा रहे, वो तो मरना चाहता है, इन पापों से वो माफी मांग रहा है कि मेरे अपराध को क्षमा करो, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपके चरण में प्रहार किया है, ये मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि जो मैंने अपराध किया है। तो कह रहा है, हे वैकुंठपति, आप इस पापी को पशु शिकारी को तुरंत मार डालिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, आपके चरण में मैंने जो प्रहार किया है मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन अपराध के लिए जरूर माफी मांग रहा हूँ, हे आप मुझे मार डालो जिससे सत्पुरुषों के साथ पुनः ऐसा कभी अपराध ना हो, कोई अपराध ना करे इस प्रकार से। तन्मासो जहि वैकुंठ पापमानम मृगलोकम यथा पुनरहम देवम न कुर्याम सदती क्रमम। तो इन बातों से जो ना जितने संत हैं वो मिट जाएंगे। फिर कई बार भक्तों के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसका क्या जवाब दें, कोई व्यक्ति कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तात्पर्य में लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यदुवंश का जो युद्ध हुआ आपस में पूरा संहार हुआ और भगवान कृष्ण पर शिकारी का जो आक्रमण हुआ ये क्या है, भगवान की लीला इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से भगवान की अंतरंग शक्ति के कार्यकलाप है। प्रमाण के अनुसार यदुवंशियों में युद्ध हुआ था सूर्यास्त के समय, तब भगवान सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए और उसी समय एक शिकारी मृग मारने के इरादे से वहां आया, किंतु जहां पर 56 करोड़ योद्धा तुम युद्ध में मारे गए हो सोचो और खून से लथपथ सब पड़े हो, वहां एक शिकारी मृग मारने के प्रयास में किस तरह पहुंच सकता है? क्योंकि मृग स्वभाव से डरपोक होता है, अतः ऐसे विशाल युद्ध क्षेत्र में मृग कैसे आ सकता है और किस तरह एक साधारण शिकारी ऐसे नरसंहार के बीच अपना कार्य कर सकता है? इसलिए यदुवंश का लोक और कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीलाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया है। ये अब वो शिकारी क्या कह रहा है? शिकारी ने कहा कि आप मुझे मार डालिए, ना तो ब्रह्मा ना ही रुद्र आदि उनके पुत्र, ना ही वैदिक मंत्रों के स्वामी कोई महर्षि ही आपकी योग शक्ति को समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी योग शक्ति ने उनकी दृष्टि को ढक दिया है। इसलिए आपकी योग शक्ति जिस तरह कार्य करती है उसके बारे में वे नहीं जानते हैं। इस तरह इसलिए निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति मैं किस तरह है आपके बारे में जान सकता हूँ? कौन कह रहा है? शिकारी कह रहा है, मैं तो बहुत निम्न जन्मा हूँ, बड़े बड़े ऋषि लोग और शंकर ब्रह्मा भी नहीं जान पाते हैं आपको, तो मैं कैसे आपको जान सकता हूँ? यस्यात्म योग रचितम न विदुर विरिंचो रुद्रादयोस्य तनया पतयो गिराम ये तन्मायया पिहत दृष्टय एतदंजः किं तस्य ते वयम संगतयो गृणीमः। अब भगवान क्या कहते हैं? क्योंकि अपराध से बहुत डर गया कि मैंने भगवान के चरण में प्रहार किया है, आप सोचो कितना उसको डर लग रहा होगा। तो भगवान कहते हैं तुम मत डरो, उठो, जो कुछ हुआ है वास्तव मेरी अपनी इच्छा है, ये मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र लोगों के धाम में स्वर्ग में जाओ, इस शरीर से ही स्वर्ग में जाओ। इस शरीर से कौन स्वर्ग में जा सकता है जिसमें कोई पाप नहीं किया जीवन भर में? युधिष्ठिर महाराज गए है ना, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारा कोई पाप नहीं हुआ है, सदैव स्वर्ग भेजा उसको कि कोई पाप है ही नहीं, थोड़ा सा भी पाप हो तो शरीर छोड़ करके ही स्वर्ग जाता है कोई व्यक्ति है ना, कोई पाप नहीं हो तो देह के साथ स्वर्ग जाता है। युधिष्ठिर महाराज गए तो भगवान कहते तुम देह के साथ स्वर्ग जाओ। माँ भय जरे तुम उत्तिष्ठ है काम ऐसे कृतो ही में या ही तुम मदन ज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। अपनी इच्छा से अपना दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण का आदेश पाकर उस शिकारी ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें शीश झुकाया। इसके पश्चात उस शिकारी ने उस विमान में प्रस्थान किया जो उसे स्वर्ग ले जाने के लिए उसी समय उतरा था। एक विमान भगवान की इच्छा से आया और वो भगवान के आदेश से विमान में बैठ करके स्वर्ग चला गया। ये क्या जिसको भगवता कृष्ण ने इच्छा सरीनी नाम ये परिक्रम तमत्वा विमाने न दिवम जाओ। उसी समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण को ढूंढ रहा था। दारुक कौन है? भगवान का सारथी है। जो ही वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूलों की गंध का अनुभव किया तो समझ गया कि भगवान यहां पर हैं। अब अपने स्वामी के बिना वो क्या करे? जो भगवान के हमेशा आश्रित रहता है, भगवान के आदेश के बिना हिलता भी नहीं है, वो क्या करे? बड़ा परेशान है, भगवान को ढूंढ रहा है। तो जहां से सुगंध आ रही हवा उस दिशा में वो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दारु कहा कृष्ण पद अन्विच्छन्न दिगम्यताम वायुं तुलसिका मोदम आग्रायाभिमुखम ययम। भगवान कृष्ण को बरगद के वृक्ष के मूल पर आराम करते हुए और उनके चमचमाते हथियारों से घिरा हुआ देखकर दारुक अपने हृदय में सजो स्नेह को संभाल नहीं सका। वो जो ही रस के नीचे उतरा उसकी आंखों में आंसू भराए, वो भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। तम तत्र तिग्मन् युधिरा युधैर्वृतम ह्यस्वस्य मूले कृतकेतनम् पतिम् स्नेह प्लुतात्मा निबपात पादयो तथा दवप्रुत्य सबाचलोचनः। दारुक ने कहा जिस तरह चंद्रमा के बिना रात में लोग अंधकार में धस जाते हैं, रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, हे प्रभु अब मुझे आपके चरण कमल के बिना कोई दृष्टि नहीं रह गई, अंधकार में अंधे के समान घूम रहा हूं, मैं अपनी दिशा नहीं बता सकता हूँ, न कोई शांति पा सकता हूँ। अपस्थितरणाम भजम प्रभो दृष्टि प्रणस्ता समसी प्रमिष्टा जिसो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशाया मुलुपे प्रणस्ते। तो वो सारथी भगवान से बात कर ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने ही भगवान का रथ और घोड़ों और गरुड़ से अंकित झंडे समेत ऊपर चला गया, आकाश में उड़ गया। जिस रथ को वो चलाता था वो रथ आकाश में उड़ गया। इति प्रभति सुदेव रथो गरुड़ लांछन समुत्पात राजेन्द्र तासो ध्वज उदीक्षत। विष्णु के सारे हथियार ऊपर चले गए, रथ का पीछा करने लगे, भगवान के हथियार भी रथ के पीछे पीछे चले गए। तब जनार्दन अपने उस सारथी से जो ये सब देखकर अत्यधिक चकित था, भगवान सारथी से बोले समन्वगच्छन् दिव्याणि विष्णु प्रेरणानि च तेनाति विस्मितात्मानम् श्रोतमा है जनार्दन। अब भगवान क्या कहते हैं, हे सारथी तुम द्वारका जाओ और हमारे परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके प्रियजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है, उनसे संकर्षण के तिरोधान और मेरी वर्तमान दशा के विषय में भी बतलाना। गच्छ द्वारे वतीं सोत ज्ञातीनां निधनं नितः संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मन्दसाम। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण ने अपने रथ को घोड़ों सहित और हथियार सहित वैकुंठ में भेज दिया, किंतु दारुक को कुछ अंतिम कार्य शेष था इसलिए दारुक रहा, लेकिन रथ और घोड़े और उनके हथियार सब चले गए, उनका सब काम समाप्त हो गया था। सारथी का कुछ काम रह गया था इसलिए सारथी अभी रुका हुआ है। भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें अब द्वारका में नहीं रहना है और तुम्हारे संबंधियों को भी द्वारका में नहीं रहना है, क्योंकि एक बार जब मैं उस नगरी को छोड़ चुका हूँ तो समुद्र में डूब जाएगी द्वारका। द्वारकायाम तनस्थेयम भवंदिष्टा सुबंधुभि मया त्यक्ताम यदुपुरीम समुद्राप्लावयिष्यति। तुम सबों को अपने अपने परिवार और साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना है। इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ ये सब पास पास हैं, ये दिल्ली समझो। स्वं सं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुने नामिता सर्वे इंद्रप्रस्थं गमिष्यथे। हे दारुक तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहना, तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन कर समझते हुए शांत रहना। तुम तुम अंधर में मास्ताय ज्ञान निश्चय उपेक्षक मन माया रचिता मेताम विज्ञायोपम रज। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान जो है जो तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं दारुक को, क्योंकि भगवान के नित्य मुक्त संगी हैं दारुक जो वैकुंठ से आए हैं, इसलिए दूसरे लोग भगवान की लीलाओं से विमोहित क्यों ना हो जाएं, लेकिन दारुक तो शांत और आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहेंगे ही। दारुक को कोई मोह नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान की नित्य संगी है। इस प्रकार आदेश पाकर दारुक ने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें बारम्बार नमस्कार किया और भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे, उदास मन से वो नगर को लौट गए। इत्युक्त सम परिक्रम में नमस्कृत पुनः पुनः तत्पाद शीर्ष पाधाय दुर्मना प्रेयपुरी। अब क्या हुआ, जितने बड़े बड़े देवता हैं सब आए भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब भगवान का दर्शन नहीं मिलने वाला है, अंतिम अवसर है। तो शिव और उनकी प्रेयसी कौन, पार्वती, सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, है ना, शिव पार्वती ये दर्शन करने आए, और मुनियों और प्रजापतियों के साथ इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा जी भी आए। कहां पर, ये कौन सा स्थान है, प्रभास, प्रभास क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र में एक शिलालेख है, तो बड़ा अज्ञान है उस शिलालेख में, उसमें लिखा है कि इस स्थान पर कृष्ण की मृत्यु हुई, है ना, तो बड़ा अज्ञान है। श्रीमद् भागवत वो अज्ञान दूर करता है, भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान जन्म लेते हैं जन्म लेने की लीला करते हैं आप अपने को और भक्तों को आनंद देने के लिए, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान शरीर नहीं छोड़ते हैं, भगवान का प्रस्थान देखने के लिए। ये बड़े आश्चर्य की घटना है, भगवान जाएंगे तो ये देखने के लिए चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और पितरगण, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और बड़े बड़े सर्प, ये सब इकट्ठे हुए। आते समय वे सभी भगवान कृष्ण के जन्म और कर्मों का विविध प्रकार से गान और महिमा वर्णन कर रहे थे। पितरा सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा चारण यक्ष रक्षांसि किन्नरा सरसो द्विजां दृष्टु कामा भगवतो निर्यालं परमोत्सुका गायन्तश्चा गृणन्तश्चा सौरे कर्माणि जन्मशा। उन्होंने आकाश में अपने विमानों की भीड़ लगा दी, आकाश खसाखस भर गया। सोचो आकाश, आकाश में बहुत जगह होती है, ये आकाश भर गया विमानों से, आकाश में जगह नहीं कहीं। और अचंद भक्ति के साथ सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बब्रशो पुष्य वर्षाणी विमानामलि भिर्नभा कुर्वन्ता संकुलम राजन भक्त्या परमयायुता। अपने समक्ष ब्रह्मांड की पितामह ब्रह्मा जी को देखकर भगवान देखते हैं, अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को देख करके सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने मन को अपने भीतर स्थित किया और अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतेरात्मनो विभो संयोज्यात्मनि चात्मानं बन्धननिप्रेयमीलयन्। तात्पर्य को ध्यान से सुनिए, लिखा है श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण पहले ही ब्रह्मा और अन्य देवताओं की उस प्रार्थना को स्वीकार कर चुके थे जिसमें उन्होंने भगवान से देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के भीतर अवतरित होने की याचना की थी। अब ये देवता भगवान के सामने आए और वे सभी उन्हें अपने लोक में ले जाना चाह रहे थे। सब देवता चाहते थे कि हमारे स्थान में आओ भगवान, यहाँ का भार उतार दिया है ना? इन असंख्य सामाजिक कार्यों से बचने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो समाधि में लीन हो। भगवान किसी को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं कि वो बात करें भगवान से है? तो सब चाहते हैं कि हमारे स्थान में आए भगवान, तो आंखें बंद कर ली, मानो समाधि में लीन हो। फिर जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें योगियों को यह सिखलाने के लिए बंद कर ली कि स्मर्त लोग को किस तरह अपने रहस्यवादी ऐश्वर्य से किसी आसक्ति के बिना त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान कृष्ण के अंश हैं, फिर भी भगवान ने इस बात पर बल देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। किस जगत से प्रयाण करते समय मनुष्य को अपना मन भगवान में स्थिर कर लेना चाहिए। ये एक मनुष्य की लीला भी है कि भगवान में स्थिर करे अपना मन को, तो भगवान स्वयं अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपना ही ध्यान कर रहे हैं, उन्हें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। अब अपने दिव्य शरीर को बिना जलाए योग अग्नि के द्वारा बिना जलाए, योगी लोग अपने दिव्य शरीर को जला देते हैं, ये भगवान अपने दिव्य शरीर को जलाते नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान कृष्ण अपने शरीर को जलाए बिना अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगत का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त ध्यान का लक्ष्य है। लोकाभिरामाम सतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्नेया दंगा धाम विसत्वकम। इसमें सुनिए तात्पर्य क्या लिखा है। जिस योगी को अपना शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति मिली होती है, वो अपनी योग अग्नि के द्वारा ध्यान में ज्वाला उत्पन्न करके अपने शरीर को जला देता है और फिर अगला शरीर प्राप्त कर लेता है। इस तरह देवता लोग भी योग अग्नि का प्रयोग करते हैं जब वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन भगवान तो योगियों और देवताओं जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। देवता लोग भी तो बद्ध हैं, उनका भी भौतिक शरीर होता है, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान का नित्य आध्यात्मिक शरीर सारे जगत का स्रोत है। जैसा कि लोकाभिरामम सतनुम शब्दों से सोचित होता है। भगवान कृष्ण का शरीर सारे ब्रह्मांड के लिए आनंद का स्रोत है। धारणा ध्यान मंगलम, जो लोग ध्यान और योग के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे भगवान के शरीर के ध्यान के माध्यम से सर्व मंगल प्राप्त करते हैं। क्योंकि योगी कृष्ण के शरीर के चिंतन करने से मुक्त हो जाते हैं तो वो शरीर निश्चय ही भौतिक नहीं है। इसलिए संसारी अग्नि द्वारा या अन्य किसी अग्नि द्वारा कृष्ण के शरीर को भस्म नहीं किया जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के कथन का स्मरण कराते हैं। भागवत में बहिने मध्य स्मरेत रूपम मम तद ध्यान मंगलम, अग्नि के भीतर मेरे शरीर का ध्यान करना चाहिए। भगवान का शरीर अग्नि के भीतर उसका भी कारण है, तो अग्नि फिर भगवान के शरीर को कैसे जला सकती है? अग्नि को भी जलाने की शक्ति मिली है कहाँ से? भगवान के शरीर से। तो वो अग्नि भगवान के शरीर को कैसे जला सकती है? क्योंकि भगवान का दिव्य रूप अग्नि के भीतर तत्व के रूप में स्थित रहता है, तो भला अग्नि भगवान के शरीर को कैसे जला सकती है? इस प्रकार यद्यपि भगवान योग समाधि में प्रविष्ट होते प्रतीत हो रहे थे, किंतु अदग्ध शब्द सूचित करता है कि भगवान का शरीर विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होने के कारण बिना जले वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुआ। आगे जो ही भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा क्यों ही सत्य धर्म धृति कीर्ति और सौंदर्य उनके साथ साथ चले गए। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। दिव्य दुंदु भयो ने धूम ते तो सुमन सखा सत्यम धर्म धृतिर भूमे कीर्ति श्रेष्ठ अनुतम ययुम। ब्रह्मा इत्यादि देवता और उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछ देवताओं ने उन्हें देखा और बहुत चकित हुए। जो महान भक्त थे देवता, वो देख पाए भगवान को कि भगवान कैसे अपने धाम में जा रहे हैं। देवादयो ब्रह्म मुख्या कभी चंदम सदा मनि अभिज्ञात गतिम कृष्णम दृश्यता। जिस तरह सामान्य लोग बादलों में बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर पाते कि बिजली कैसे चली जाती है बादलों के बीच में, उसी प्रकार देवता अपने धाम में लौटते हुए भगवान कृष्ण की गति का पता नहीं जान सके। सौदा मनिया यथा काशे याम क्या है स्वा ब्रह्मंडलम न लक्ष्य थे मत के मर तथा कृष्ण से देव तात्पर्य लिखा है। बिजली की अचानक गति देवता तो देख सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं देख सकता। बिजली की गति को देवता लोग देख सकते हैं, मनुष्य नहीं देख सकता। इसलिए भगवान के कृष्ण के आकस्मिक प्रयाण को वैकुंठवासी जो कृष्ण के संगी हैं वो समझ गए, लेकिन सामान्य देवता नहीं समझ पाए। अब कुछ देवतागण कौन ब्रह्मा और शिव जैसे ये निश्चित कर सके कि किस तरह भगवान की योग शक्ति कार्य कर रही है, और वे चकित थे। सारे देवताओं ने भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा की और तब वे अपने अपने लोक को लौट गए। ब्रह्म रुद्रादयस्ते तुम दृष्ट्वा योगे गतिं हरे विस्मितास्ताम् प्रशंसन्ता तं तं लोकं ययुत्सदम्। तात्पर्य लिखा है यद्यपि इस ब्रह्मांड में एक तरह से सारे देवता सर्वज्ञ हैं, किंतु वे भगवान की योग शक्ति को समझ नहीं पाए, इसीलिए वे चकित थे। देवताओं से अब कोई बात पूछो तो वो बता सकते हैं, भूत वर्तमान भविष्य बता देते हैं, लेकिन भगवान की गति को वो भी नहीं जान सके। हे राजन, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज से कि तुम जान लो कि भगवान का प्राकट तथा उनका अंतर्धान होना वास्तव में उनकी माया शक्ति का ही खेल है। जैसे कि कोई अभिनेता करता है, वो मंच पर भी जन्म मरण की लीला करता है, मरने की लीला करता है ना, या जन्म लेने की लीला करता है। वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करते हैं, कुछ साल तक इस ब्रह्मांड में खिलवाड़ करते हैं, अंत में इस ब्रह्मांड को समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों को बंद करके अपने दिव्य महिमा में स्थित रहते हैं। राजन पर शतम वृंदन नापिया माया विडम्बन यथा नटस्वात्मनेद मनो विश्व विहृत चांते। संग्रत सात महीनों पर आसे। अब इसमें तात्पर्य सुनिए, जीव गोस्वामी के अनुसार यदि वंश में जो तथाकथित सिद्ध हुआ ये भगवान की लीला शक्ति का प्रदर्शन था, क्योंकि कृष्ण के निजी संगी कभी बद्ध जीवों की तरह सामान्य जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसा होने से स्वयं भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं। हाँ, नृत्य सब महत्वपूर्ण है भगवान को है, जैसे नाटक कोई व्यक्ति करता है ऐसे भगवान ने नाटक किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी जादूगर की एक कहानी बताते हैं जो मरने की कलाबाजी दिखाता है। एक जादूगर भी मरने की कलाबाजी दिखाता है ना, फिर भगवान के लिए क्या कहना है। वो मरता नहीं है लेकिन मरने की कलाबाजी दिखाता है। एक जादूगर किसी राजा के द्वारा रखाए गए बहुमूल्य वस्त्रों, रत्नों, सिक्कों आदि के ढेर के पास राजा के सामने गया। रत्न जटित हार अपने हाथ में लेते हुए जादूगर ने राजा से कहा, अब मैं इस हार को ले रहा हूँ, आप इसे नहीं ले सकते, और उस हार को गायब कर दिया। अब ये सोने का सिक्का उठा रहा हूँ, आप इसे नहीं ले सकते, ये कहकर सोने के सिक्के को गायब कर दिया। इस तरह राजा को चेतावनी देते हुए वो राजा के 7,000 घोड़ों को गायब कर दिया उसने। मैंने ले लिया आपके 7,000 घोड़े, गायब कर दिया। इसके बाद वो जादूगर ऐसा मोहजाल फैलाया उसने, राजा के लड़के, नाती, पोते, भाई, सब परिवार वाले एक दूसरे से लड़ते हैं और सब मर गए राजा के ही सामने। देखो खेल कर रहा है, राजा के महल में ही पूरा राजा का परिवार एक दूसरे से लड़ करके मर गए। और राजा जादूगर को देखता है, उस विशाल सभवन में बैठे हुए राजा सब देख रहा है कि ये सब हो गया, क्या हो गया। इसके बाद जादूगर बोला, हे राजन, अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहता, जिस तरह मैंने जादू सीखा है उसी तरह अपने गुरु के चरण कमलों की कृपा से मैंने योग का ध्यान भी सीखा है। मनुष्य को किसी तीर्थ में ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत पुण्य कर्म किए, इसलिए आप ही स्वयं तीर्थ हो, इसलिए आप